हरे कृष्ण। तो आज के इस प्रार्थना में हम पांचवें श्लोक का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन संपत्ति अनुयायी या सुंदर स्त्री, इनमें से किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। पांचवें श्लोक की जो भावना है वो एक प्रगत भक्त की भावना है। दिस फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ एडवांस डिवोटी। क्योंकि आमतौर पर दुनिया में सब लोग समझते हैं कि पैसे से बहुत कुछ मिलता है, सुख मिलता है। सब लोग दिन रात यही सोचते हैं कि और अधिक पैसा कमाएंगे तो और सुख मिलेगा, और अधिक धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, पोजीशन, प्रमोशन मिलेगा तो जीवन में और सम्मान मिलेगा, और खुशी मिलेगी, समाधान मिलेगा। लेकिन जब किसी जीव को ये पता चलता है कि इनमें से किसी वस्तु में सुख नहीं है, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही एडवांस्ड प्रगत डिवोटी है, प्रगत भक्त है, जो जानता है कि ये सब चीजें जो है उनका लाभ बहुत क्षणिक है, टेम्पररी है, कुछ समय के बाद नष्ट होने वाला है। ये हमारा पोजीशन, ये हमारी पावर, हमारा धन दौलत, कभी कभी धन दौलत होने पर भी खुशी नहीं मिलती। अगर बहुत धन है लेकिन किसी का डिवोर्स हो चुका है, और बहुत धन है लेकिन लड़का ब्राउन शुगर पीता है, नशा करता है, ऐसे कई घटनाएं बोल सकते हैं। बहुत सारा धन है, संपत्ति है, पोजीशन है, लेकिन पत्नी का देहांत हो चुका है, जीवन में अकेला है। तो इतना सारा धन संपत्ति होने पर भी आदमी को उसका भोग लेना मुमकिन नहीं। कई ऐसे धनी लोग हैं, गड़गंज धन संपत्ति उनके पास है, लेकिन उनको ऐसी बीमारी होती है कि वो कोई घन पदार्थ खा नहीं सकते, नो सॉलिड्स दे कैन ईट, क्योंकि उनको इससे फेजल कैंसर है। किसी को पेशाब करने में इतना दर्द होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, इतना सारा धन होने पर भी वो जो भिखारियों को भी आनंद उपलब्ध है वो उसको भोग नहीं सकते। तो इसलिए बीमारी या कष्ट या बीमार या और कोई तकलीफ, पीड़ा, यातना जीवन में होने के पहले अगर हमको ये अनुभूति आती है कि इन सब चीजों में सुख नहीं है, तो वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति को बिना बीमार पड़े, बिना पत्नी का डिवोर्स हुए, बिना लड़के का नशा करने का स्थिति होते हुए, अगर ये सब कुछ ना होते हुए सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये अनुभूति होती है कि इस धन संपत्ति में, सुंदरता में, मान सम्मान में सही आनंद नहीं है, तो ये स्थिति को हमको पाने का प्रयास करना चाहिए, ये समझने का। क्योंकि बुजुर्ग लोग, संत लोग शास्त्रों में और प्रवचनों में हजारों लाखों वर्ष से पहले से कहते आ रहे हैं कि इसमें कोई सुख नहीं है, धन संपत्ति में कोई सुख नहीं है। लेकिन ये भी हम अनुभव करते हैं कि धन संपत्ति जब नहीं होती है तो थोड़ा बहुत सुख होता है, लेकिन जब वो आती है तो बचा हुआ सुख भी ले जाती है। इसमें लोगों का द्वेष बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, स्वार्थ बढ़ता है, माँ बाप को देखना बंद हो जाता है, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, केवल धन की वजह से। जिस धन को हम समझते हैं कि वो पाने से खुशी मिलेगी, वो जो बचा हुआ सुख भी है वो भी धन छीन लेता है। इसलिए भक्त क्या बोलता है कि मुझे ना धन संपत्ति चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना शरीर का सुख चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। वो भी कैसी भक्ति चाहिए? जन्म जन्मांतर तक। और कैसे चाहिए? अहैतुकी। ऐसा नहीं कि मैं अधिक जप करूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अधिक जप करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग दंडवत करेंगे मुझे, या अधिक भक्ति करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, बहुत धन संपत्ति मिलेगी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बनेंगे जो मुझे देखकर प्रणाम करेंगे, हार पहनाएंगे। इस उद्देश्य से नहीं, अहैतुकी यानी कि किसी भी उद्देश्य, बिना उद्देश्य के मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। ऐसा क्यों सोचता है भक्त? क्योंकि वो जानता है कि जब वो अहैतुकी भक्ति करता है तो ही उसे आत्मा का सुख जो है वो प्राप्त होता है। और हम सब जानते भी नहीं है कि हम किसको क्या खोज रहे हैं। वास्तविक दृष्टि से हम सब लोग आत्मा का सुख खोज रहे हैं, जो परमानेंट है, जो समय के साथ नष्ट नहीं होता है। ऐसे सुख को हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं कहाँ ढूंढना है, इसलिए पैसे में, मान सम्मान में, अनुयायियों में और प्रॉपर्टी में और प्रमोशन में ढूंढते हैं उसको। लेकिन ये सब प्राप्त होने के बाद भी हम वैसे रहते हैं जैसे पहले थे, खाली झूठी आशा में जीते रहते कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये सब होने पर मिलेगा। लेकिन सही सुख की शुरुआत तब से होती है जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को शरण लेते हैं, जब भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। जब ये दिल से करते हैं तो सच्चा सुख क्या है उसका पहला अनुभव उस समय होता है। फिर उसका एक बार टेस्ट लग गया, व्यक्ति को रुचि लग गई, तो फिर वो लगातार उसी के पीछे रहता है। फिर उसको दुनियादारी का कोई आनंद मोहित नहीं करता है, टेम्प्ट नहीं करता है। तो इस पांचवें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में ये पुकार रहे हैं कि मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, वो भी जन्म जन्मांतर तक चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जन्म के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं मोक्ष चाहता हूं, वो भी नहीं चाहते हो। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मतलब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। अगर आपको स्वर्ग में रखना है तो स्वर्ग में रखिए, मृत्यु के बाद नरक में भेजना है तो नरक में भेज दीजिए, इस पृथ्वी पर दोबारा भेजना है तो पृथ्वी पर भेज दीजिए, लेकिन जहां पर रखेंगे आपकी भक्ति जरूर देना। हनुमान जी को भी प्रभु रामचंद्र ने यही बताया था, सब कुछ होने के बाद जब वो अपने धाम में जा रहे थे तो हनुमान जी को कहा कि क्या चाहिए बताओ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। हनुमान जी को इतना बड़ा प्रलोभन दिया भगवान ने, एक लोक दे सकते हैं उनके लिए, सारी सिद्धियां, सारा शक्ति, सारा सम्मान, विश्व का राज्य दे सकते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या बोले, मुझे केवल आपका दास बनकर आपकी सेवा करने का मौका दो, चाहे पृथ्वी पर रखो या अपने धाम में रखो या नरक में भेजो। ये सच्चे भक्त का लक्षण है, क्योंकि वो जानता है कि सही सुख जो है वो निरंतर भगवान की सेवा में लगने में है। जो निरंतर भगवान की सेवा लगने की अभिलाषा भी रखता है उसको भी सुख की प्राप्ति होती है। इतनी शुद्ध और इतनी पावरफुल इच्छा है कि इच्छा करने मात्र से सुख का आरंभ हो जाता है और सेवा करने में लगने पर अति आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हम सब लोग इस प्रार्थना को पढ़ते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी दुनिया के माया मोह से बचकर भगवान के लिए ही आकर्षित हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।